نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا حلقہ ہے کشف المحجوب. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا کنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب کشف المحجوب کو ہم پڑھ رہے ہیں سالہ سال سے. معرفت کا خزانہ ہے، علم کا سمندر ہے. آج کے ہمارے معمولات یہ ہوں گے، انشاءاللہ کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا، پھر سوال و جواب کی، روحانیت کے سوال و جواب کی نشست ہوگی، پھر میں نے مٹی کے برتن کنڈے پہ نمک ہے اس پہ دم کرنا ہے، جو چٹکی چٹکی آپ لے جائیں گے بہت ادب سے، بہت احترام سے، نیچے نہ گرے ایک ذرہ بھی کہیں ہماری بے توجہ بے ترتیبی کی وجہ سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائے ہوئے لنگر، جو آپ لنگر لوگوں کو تقسیم کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس پہ دم کروں گا، اور تسبیح خانے میں موجود احباب ہیں جو ان پہ دم، اور آن لائن پوری دنیا میں مخلصین انتظار کرتے ہیں ان پہ دم ہوگا. یہ آج کی ہماری ترتیب ہے. اگلی ترتیب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ ہم سر پر رکھ کر ایک روحانی کڑا، حفاظتی نورانی حصار اور کوٹ اور ڈیفنس وال اپنی اپنی نسلوں کے ارد گرد یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ پچھلے بھی کشف المحجوب میں یہ روحانی سلسلہ. اور اگلا جو ہے آج کا ہمارا روحانی پیکج ہے مغفرت کا عمل. 11 بار اپنے دل پہ انگلی رکھ کر ہم نے کلمہ پڑھنا ہے اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے مرشد ہمارے دل پہ انگلی رکھیں قلب کو جاری کرنے کے لیے، تو یہ خواتین مرد کے لیے عمل ہوگا، اور پھر اپنے پیاروں اور مرحومین کے لیے، اور اپنے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کے لیے بھی یہ عمل ہے. آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کے لیے یہ بھی عمل ہے، اور دوسرا یہ عمل آپ 11 بار کریں گے، لیکن پوری دنیا اگر ہم شامل کریں تو یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بار ہو جاتا ہے، اور 70,000 کا نصاب مغفرت کے لیے ہو جائے تو برکت ہے، بہت بڑی برکت، اور یہ بیٹھے بیٹھائے آپ کا 70,000 کا نصاب ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھائے آپ کا 70,000 کا نصاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں کشف المحجوب کے حلقے کو؟ ہاں جی. اور اگلا جو ہے ہمارا شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ پڑھ کے ان کے وسیلے سے بہت کامیاب عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے، اور بہت مشکلات کے حل کرنے کا عمل ہے. اور اب اس کے بعد پھر مراقبہ ہے، اور پھر شفائیہ دعا ہے. میں اس کو بند کرا دوں. شفائیہ دعا ہے جو چلے والوں کے لیے، روحانی یہاں چلا کرنے آتے ہیں 3 دن کا، ان کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے دعا ہے. آج کی ہماری انشاءاللہ ترتیب یہ ہے. آج کی ترتیب اس کو ذرا آئندہ وضاحت سے لکھیے گا. اب ہم کشف المحجوب کی ترتیب کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، اگر آپ بہت زیادہ روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا، ولایت کی دنیا اور دعاؤں کی قبولیت فوری چاہتے ہیں، تو 90 کشف المحجوب کے درس مسلسل سنیں، چاہے روز ایک سنیں، آدھا سنیں، دو سنیں، 90 کشف المحجوب کے درس سنیں. 90 خواتین بھی مرد بھی، حیرت انگیز زندگی میں آپ کو برکتیں، قبولیت دعا، और रिस्क और मसाइल का हल, ये आप तजर्बा कर लें। आज का हमारा सबक है हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्त्री रहमतुल्लाह अलैह, तबा ताबईन में से हैं और दिलों के मालिक, ऐबों के मिटाने वाले मोहम्मद सहल बिन अब्दुल्ला तस्त्री रहमतुल्लाह अलैह, वक्त के पीर। सब लोग आपको अकीदतमंद और मद्दाह हैं और आपने बहुत मुजाहदे रियाजतें की और आपके मामलात अच्छे, इखलास और अफ़ाल के अयूब में आपके कलाम नहायत लतीफ। उलमाए ज़ाहिर कहते हैं कि आपने हकीकत और शरीयत को बाहम जमा कर दिया। लोग ये बात भी कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हकीकत और शरीयत को जमा कर दिया तो महाल है कि औलिया इसमें फर्क करें। अगर दोनों में फर्क मौजूद है तो ला महाला एक कुरत दूसरे को कबूल करना पड़ेगा। आप उन औलिया सुलहा में से हैं जिन्होंने ईमान की सेहत पाई और ईमान की सेहत की हालत में लोगों को अल्लाह का नाम सिखाया, ख्वाहिशात बातिल से मना किया और असल जिंदगी की हकीकत और शरीयत को वाज़ेह किया। मौतज़िला उस दौर के फितने थे, उनके खात्मे में लगे रहे, हक बजा लाए, खतरनाक राहें अख्तियार की, लेकिन उनकी रूहानियत का सूरज गरूब ना हुआ। वो सबको अल्लाह की निस्बत लाने में कोशां रहते थे, हत्ता के बिल्कुल जाहिल लोग भी उनसे इस्तेफादा करते थे, रूह की दुनिया पाते थे, मन की दुनिया पाते थे और अल्लाह का ताल्लुक पाते थे। ये थे हजरत अब्दुल्ला सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली और दुर्वेश थे, जिनका तस्करा आज के सबक में हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। एक चीज जो खास तौर पे आज के सबक में हमें मिली है, जिसका तस्करा मैं करना चाहूंगा, इन्होंने पहले ही लफ्ज में एक बात फरमाई है कि बहुत रियाजतें की। रियाजत, रियाज कहते हैं मश्क को, एक चीज को बार बार करना। हमारे घर के करीब एक घराना था, चंद घर छोड़ के वो किसी घर पे किराए पे आके बैठे थे और वो गाने बजाने का उनका शोभा था। तो अम्मा रहमतुल्लाह ने उनके घर चीजें भेजना शुरू कर दी, हदिया उनको अल्लाह के नाम के करीब करने के लिए। मैं अक्सर उनके घर में कोई चीज देने जाता था, पकी हुई चीज, कोई हदिया, कोई चीज। तो वो हारमोनियम और तबला उनके घर बज रहा होता था, तो मैं कहता था, उनको बूढ़ी अम्मा कहते थे, मैं कि मासी कहां है, कहले वो रियाज कर रही है, रियाज कर रही है, गाने बजाने की मश्क कर रही है। उसमें उन्हें अपना लहजा, अपनी जुबान, अपने अंदाज को कंट्रोल में रखना है कि ये सुर, ये साज कैसे निकालना है। जो रूह की दुनिया पाना चाहते हैं, जो मन की दुनिया पाना चाहते हैं, जो तरक्कियां, इज्जतें, शान और शौकतें पाना चाहते हैं, वो चीज रियाज के बगैर नहीं मिलती। और रियाज मश्क, और मश्क ना गवारियों के बगैर नहीं। आज देखा कितनी धुंध है, कल 2 बजे जाके हजवेरी महल में धूप निकली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी इस सर्दी में, दाढ़ी भी भीगी हुई थी, पगड़ी भी भीगी हुई थी, सब मेरे मुखलिसीन खिदमत वाले साथ चल रहे थे और खिदमत कर रहे थे। ये रियाज था, रूहानियत का, इसे रियाजतें कहते हैं, मुजाहिदे कहते हैं, नागवारियां कहते हैं। धुंध थी लेकिन मेरे अल्लाह के कैमरे बड़े काम कर रहे थे, मेरा अल्लाह देख रहा था। मेरा अल्लाह देख रहा था, ये शहजादे, ये शहजादे, अल्लाह हू अकबर, ये घरों के शहजादे, जिनको नौकर खादिम सलाम करें, और उनके दस्तरखान पे खाने सजे, ये मुसलसल मुजाहदे कर रहे हैं और कुर्बानियां कर रहे हैं। मैं 5 दिन वहां मैंने खिदमत की अपने साथियों के साथ। आज आपको थोड़ा सा हजमेरी महल का पस मंजर थोड़ा सा बता दो, खिदमत का थोड़ा सा 5 दिन की छोटी सी कारगुजारी आपको सुना दूं, क्योंकि सुना यह है कि खिदमत करके बड़ों को जाके हालात बताएं, बड़ों को हालात बताएं, बड़ों के सामने हालात सुना के उनसे दुआ करवाएं। आज मैं आपसे दुआ कराना चाहता हूं। सुना है करे यार पे करी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। पहले दिन मेरे पास तकरीबन 20-25 अफराद थे तकरीबन, और पहले दिन से हजवेरी महल की तामीर को तकरीबन 3 साल के करीब हुए, चंद माह कम। 3 साल के गिरे पड़े कामों को हमने इब्तदा शुरू की, और मैंने एक वाक्या सुनाया। ये रियाजतें जो आज हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने फरमाई हैं, मैं आज उन रियाजतों का तस्करा कर रहा हूं, रियाजतें। और जो रियाजतें करके आप तस्बीह खाने में लेने आए हैं, कोई घर से, कोई दफ्तर से, कोई महल से, कोई झोपड़ी से, कोई घर की जिम्मेदारियों से, कोई झमेलों से, कोई भूख में, कोई फक्र में, कोई मालदारी में, यहां तस्बीह खाने में आके उसने चंद दिन गुजारे या दम के लिए हाजिर हुआ, ये भी रियाजतों में शामिल है। और इन उठे हुए कदम अल्लाह के यहां आपके कभी जाए नहीं जाए, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वकफा बिल्लाह वली बिल्लाह तस्सीर। सबसे पहले हमने बैतुल खलाओं और वजू की तरफ तवज्जो की। बैतुल खला के मेन होल बने हुए थे, उनके ढक्कन पड़े हुए थे, बने उठा के लोगों ने इस अंदाज से फेंके कि वो टूटे हुए थे। वो कहते हैं मजदूर भाग गए थे कि हमसे नहीं उठाए जाते। 20-25 अफराद थे, सूरत कुरैश अमान सच्चे चश्मे। वो रेडी ले आए, रेडी में हवा कम थी, कुछ मैंने भरी, कुछ साथियों ने भरी, मैंने तो ऐसे दिखावे के लिए भरी। वो भर के उसके ऊपर उठाया, उठा उठा के रखे। बैतुल खला लेटरीन के मेन होल गटर के ढक्कन रखते गए, रखते गए, रास्ते बनते गए। 5 सांप मारे, 1 भाग गए इस सफर में। और मैंने कहा अभी सर्दियां हैं, अगर गर्मियां होती तो वहां सांप ऐसे चूंटियों की तरह हैं। 1 गुह निकल आई, अचानक मेरी नजर पड़ी तो बड़ी सारी गुह थी, और मेरा एक मुजाहिद था, उसने उसके आगे शापर डाल के पीछे दुम से पकड़ के उसको चक्कर देने लगा। क्या कर रहे हो, अल्लाह का बंदा, इसको ना मार, इसको एहतराम से रख। गुह से चंद बातें की थोड़ी सी, कमली वाले का वाक्या सुनाया कि मेरी गोह ने मेरे आका कमली वाले का कलमा पढ़ा था, एक बद्दू गोह लेके आ रहा था, कहने लगा अगर ये कलमा पढ़ने में आपको मान जाऊंगा। मेरे कमली वाले ने फरमाया मेरे मेरी नबुवत की सदाकत दे, और गोह ने नबुवत की सदाकत। वो ईंटें जमा की और फर्श लगाना शुरू किया वुज़ू खाने और बैतुल खला के सामने, तकरीबन 200-250 के करीब बैतुल खला है, 250 के वहां लगाना शुरू किए और ढक्कन बिछाने शुरू किए और रखने शुरू किए। रखते 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 हमें शाम हो गई, फिर मगरिब पढ़ के फिर मैं मोबाइल की रोशनी लेके बैठा और हमने ढक्कन लगाने शुरू किए, हत्ता के मगरिब के बाद तक सारे ढक्कन जो बड़ी मुश्किल से बहुत हैवी से जिन्हें 10-10 बंदे हिलाते थे वो उठा रख। और फिर हमने जाके नमाज पढ़ी और फिर बैठ के आपस में रूहानियत की बातें की और राजो नियाज किए, दुआ की, कुछ रोए, कुछ सिसके, कुछ मांगा, कुछ अल्लाह के खजानों से लिया। जितनी भी लकड़ियां पड़ी थी अब तक दरख्त काटे गए थे, एक जगह ढेर लगी हुई थी, ढेर लगा हुआ था। और मैंने देखा कि सिलेंडर के ऊपर सालन और चाय गर्म हो रही। मैंने कहा ये क्यों है? मैंने कहा लकड़ियां किस लिए हैं? फिर लकड़ियां जमा की सारी के सारी, फिर गिरी पड़ी लकड़ियां सारी जमा की, गिरे पड़े रोड़े इकट्ठे किए, ईंटें इकट्ठी की, ट्रालियों की ट्रालियां भर गई। फिर मैंने एक वाक्य सुनाया, ये मैंने मुख्तसर आपको मजमून। एक इलाके का बहुत बड़ा बादशाह सरदार था, उसके बेटे को रूह की तलाश हुई। ये रियाजतें बता रहा हूं जो आज कशफुल महचूम है, कि रूह की तलाश, रूह की तलाश, कि रूहानियत का शहंशाह बनूंगा, रूहानियत का ताजदार बनूंगा। सुना कि एक दुर्वेश है बगदाद के मजाफात में, गांव में लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते। वो वहां पहुंचे, उन्होंने जब उसका चेहरा देखा और उसकी मंशा को पढ़ा और परखा और पूछा, कहने लगे तू मेरे साथ नहीं चल सकेगा, तू शहजादा है, या कदम कदम बलाएं सौदा है कुवे जान। जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, ये कदम कदम बलाएं ये सौदा है कुवे जान, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। उसने कहा जी मैं तो बस कुछ लेने आया हूं। शेख ने बड़ा डराया, धमकाया, मना किया। उसने कहा मैं तो लेने आया हूं, फिर उन्हें गिरी पड़ी चीजों पे लगा दिया, टिंके, रोड़े, पत्थर, मिट्टी से ईंटे बना, घर बना, कमरे बना, दुर्वेश आके जहां रहे गिरी पड़ी चीजों पे लगा दिया, चुनने और बनाने पे, गिरी पड़ी चीजें जिनकी कोई हैसियत नहीं, लकड़ी का टुकड़ा है, कील है, मैं मिसाल दे रहा हूं, पत्थर है, रोड़ा है, गिरी पड़ी चीजों पे लगा दिया। वो करते रहे शहजादों, शहजादों, बादशाह जिसके सामने 70 गुलाम फर्शी सलाम करें, फर्शी सलाम, मिटा दिया, मिटा दिया अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। हाँ, कहते हैं जो मुर्शिद खाने में किसी फकीर के पास हैसियत को लेके जाएगा, हैसियत को, मेरी कौम, मेरा मनसब, मेरा वकार, मेरी इज्जत, मेरी अजमत, मेरा ओहदा, पर मैं हैसियत को लेके जाएगा, वो हैसियत मिटा के आएगा, जो फकीर बन के जाएगा वही अमीर बन के आएगा। तेरे दर का जो भी फकीर है वही तो जहां का अमीर है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। उस बादशाह के बेटे शहजादे ने अपनी हस्ती को मिटा दिया, इश्क में फना हो गए। साल हर साल, साल हर साल, जब मुर्शिद का विसाल हुआ, अब मुर्शिद की इतनी बड़ी मसनद गद्दी, इतनी बड़ी शहनशाहों का निजाम, कौन बैठे, कौन अहल है? नजर उस फकीर शहजादे पे पड़ी जो अब फकीर था। तो वो तो मैं गलियां दा रोड़ा कूड़ा, तो महल चढ़ाइया साइया, तो खस खस जितना कदर नहीं मेरा, तो मुर्शिद नू वडियाइया, तो रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मना नू याद खुदा दी सुतियां आन जगावे, ते मैं नीवा ते मेरा मुर्शिद उच्चा, उचिया दे संग लाई हो, भला होवे उन्हां उचिया दा जिन्हां नीवियां नाल लिखाई हो। उच शरीफ, उच, अब मैं उच की पैदाइश मेरी वैसी है, उच का हूं मैं, ये हवेली सारी उच का हिस्सा है, उच है सारा। वो है, उसे बुलाया, जी मशवरा हो रहा आप भी आ जाए। वो फकीर आके बैठ गया, हजरत की मसनत खाली पड़ी है। उसने कही हमारा मशवरा हुआ है, इस मसनत के अहल आप, मैं, मेरी हैसियत,
میری اوقات؟
نو نو،
وہی ہمارا تو مشورہ یہ ہوا ہے. مرشد نے آخری وقت میں فرمایا تھا میں کوئی جانشین مقرر نہیں کر رہا، بس تم آپس میں مشورہ کر کے کوئی جانشین بٹھا دے. مجبوراً انہیں مسند میں بیٹھنا پڑا، اور پھر ریاضتیں کر کر کے، مجاہدے کر کر کے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سہ سہ کے، لوگوں کے تانے اور فتوے برداشت کر کر کے، ٹھوکرے برداشت کر کر کے، سردی اور گرمیوں کی سختیاں برداشت کر کر کے، وہ ایسا پارس بن گیا تھا. پارس، پارس وہ پتھر ہوتا ہے جس کے ساتھ جو چیز لگے سونا بن جاتا ہے. پارس کا پتھر، پارس کی وٹی، وہ ہستی ایسی پارس بن گئی تھی. آج کے کشف الموجوم میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے جو لفظ فرمایا ہے نا، ریاضتیں، وہ شخص ایسا پارس بن گئے، ایسے پارس بن گئے، ان کے ساتھ جو لگتا تھا وہ ولایت کا تاجدار تھا، ان کے ساتھ ایک شخص لگا اور لوگوں نے اسے جنید بغدادی کہہ دیا. اور وہ جنید بغدادی کے مرشد حضرت سے سری سختی رحمت اللہ علیہ، میں گیا ان کی خدمت میں ابھی بغداد میں. یہ جنید بغدادی کا مزار ہے قدموں میں، مرشد کے قدموں میں، اور یہ حضرت سری سختی کا مزار ہے. گری پڑی چیزوں سے ولایت کا مقام پایا، گری پڑی چیزیں. اور ان پانچ دن میں کھجویری محل میں رہا، گری پڑی چیزیں ہی جمع کی ہیں، گری پڑی چیزیں، گری پڑی چیزیں، جو بے حیثیت تھی، جو بے وقار تھی، جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، وہ گری پڑی چیزیں، وہ ہاتھ خوش قسمت ہیں جو میرے ساتھ حجویری محل میں رہے، جو زخمی بھی ہوئے، جو چھلے بھی صحیح، وہ ٹانگیں، وہ کمر، وہ پٹھے کھچے بھی صحیح، جنہوں نے گری پڑی چیزوں کو، یاد رکھیے گا، گری پڑی چیزوں سے دو نفع ملتے ہیں، ایک ولایت ملتی ہے اور ایک رزق اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے کہ بارشیں ہو جاتی ہیں. گری پڑی چیز جو گزشتہ تقریباً 3 سال سے وہاں کام ہو رہا، اور گری پڑی چیزیں بس بکھری ہوئی تھیں، ضائع ہو چکی تھیں، ان کو تنکا تنکا جمع کرنے کی کوشش کی، ابھی پورا نہ کر سکے. سخت سردی میں، سخت دھند میں، سب تکلیف اور بھوک میں، جب لنگر کھا کے یہ فقیر نکلتے تھے نا، اپنے مقام پہ پہنچتے تھے، آدھا کھانا وہیں ہضم ہو جاتا تھا، واک ہو جاتی تھی، اور باقی آدھا کھانا خدمت میں ہضم ہو جاتا تھا. یہ ریاضتیں جو آپ مختلف کسبی خانے کے شعبے کے، پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں خدمت والے یہ ریاضتیں کر رہے ہیں، جس میں ناگواریاں بھی ہیں، جس میں تانے بھی ہیں، جس میں تعریف نہیں ہے، اور نہ آپ نے کبھی تعریف کی توقع رکھی ہے. یہ آپ میرے ساتھی ہیں، تعریف کی توقع نہیں رکھی، یہی آپ کی عظمت ہے، یہی آپ کی بڑائی ہے، یہی لاہوتی پرواز ہے. نہ شاباش جزاؤں ولا شکور، قرآن کہتا ہے نہ شاباش، نہ تھینک یو، نہ واہ واہ، نہیں، بس. پیر امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ درویش تھے لودرا کے، گوگڑا، فرماتے تھے اپنے مرشد کے بارے میں، مرشد کنوگیاں تے بھید بانتے ریاں، وہ مرشد شینچا بڑا ہے. ترجمہ کرتا پوری دنیا سن رہی، مرشد کے سامنے گیا، بھیڑ بن کے رہا، بکری کا سر اونچا ہوتا ہے اور بھیڑ کا سر نیچا ہوتا ہے. مرشد کے سامنے گیا اور بھیڑ بن کے رہا، بھیڑ بن کے رہا، پھر مرشد نے شیر بنا دیا، ولایت کا شیر، روحانیت کا شیر، اللہ کا شیر، اسد اللہ و اسد الرسول. یہ لقب تھا کن کا؟ حضرت علی، یہ شیر بن گئے تھے. مرشد کے پاس گیا، بھیڑ بن کے رہا، مٹا دیا اپنے آپ کو، کوئی حیثیت نہیں ہے، میری ساری خدمتیں کیا ہیں؟ इन चार लफ्जों में है, याद रखिएगा, रियाजतें इन चार लफ्जों में है जो आज मैं बयान कर रहा हूं। अपने लफ्ज पे लिख लें, कागज पे नहीं लिखिएगा, अपने दिल पे लिखें, मैं भी आप भी। ये चार बोल बोल रहा हूं अभी, ये चार बोल बोल रहा हूं अभी। सारी रियाजतें, सारी रूहानियतें, सारी खिदमतें इन चार बोलों में है। करते रहे, डरते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, बस। फिर अर्ज कर रहा हूं, करते रहे नंबर एक, नंबर दो डरते रहे, नंबर तीन पहले मांगते हैं या मांगते हैं? मांगते रहे, मांगते रहे, करते रहे, डरते रहे। शाख को फल लगता है तो झुक जाती है। और वो दुर्वेश क्या थे जो हाथ ऐसे करके मुंह पे रख लेते थे हर इबादत के बाद, हर दुआ के बाद, के मौला क्या पता मेरी ये नमाज, मेरी ये दुआ, मेरा ये अमल कहीं मुंह पे ना मार दे। करते रहे, डरते रहे, मांगते रहे, खिदमत भी, तलब भी और अल्लाह से भी। बार बार खिदमत और मांगते रहे, तलब और मांगते रहे, और मानते रहे। मानने का ताल्लुक समझ से नहीं है, समझ से नहीं। अंग्रेज ने कह दिया ये मोबाइल का बटन ऐसे दबाना है, पहले 0300 लगाना है। उन्होंने कहा मैं 10 नहीं लगाऊंगा। कह रहे मानते रहे, हमारे यहां यहां एक दुर्वेश थे, उनको ख्वाजा साहब कहते थे तो नहीं, खिदमत करते थे, फौत हो गए बेटे। उन्हें ना बैलेंस पहले से 10-20 रुपए ले लिया था, उधार मिलता है ना कंपनी की तरफ से, फिर जब बैलेंस डालें तो वो फिर काट लेते हैं। उन्होंने बैलेंस डाला और काट लिया, उधर से कहने लगे कि आपका ये बैलेंस इस काल के लिए ना काफी है। कह रहे बाजी, कह लगे शायद मई बोल रही है, कह रहे बाजी अभी मेरे बेटों ने डाला है, मैंने अभी डाला है, क्या जुल्म कर रहे हो? कह आपका ये बैलेंस इस काल के लिए ना काफी है। अब वो बाजी से उलझ रहा है, बाजी ये हम कहते हैं कि साइंस की दुनिया को पूरा मानना है। मेरा घुटना लगा गाड़ी को, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, साइकिल आती है, लेकिन थोड़ी सी समझ नहीं आती है कि ये गाड़ी कैसे चला रहा है। बैठ बैठ के ऐसे लगा ना तो गियर यूं हो गया, एकदम गाड़ी पर आवाज आई, क्यों हुआ? कह रहे आपका घुटना लगा है, थोड़ा सा तो यूं हुआ था, क्या हुआ था? नहीं नहीं बहुत कुछ हो गया, एक 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 जीरो ना लगाए, जीरो ना लगाए मोबाइल में, एक जीरो ना लगाए, और जीरो जीरो होता है तो मोबाइल में बात करके दिखा। यहां तो कहता है मानना जरूरी है, और रूह की दुनिया में कहता है पहले मेरी अकल में डाल फिर मानूंगा। अंग्रेज से भी कहते पहले मेरी अकल में डाल के जीरो का ताल्लुक क्या है, जीरो तो वैसे जीरो होती है, जीरो तो वैसे जीरो होती है, पहले मेरी अकल में डाल कि जीरो क्या है फिर मैं मानूंगा। उसने कहा यहां अकल नहीं, बस यहां मानना है। लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गह गा, इमी सजन वह वाह तो ऊनी सजन वह वाह। बस रूह का ताल्लुक, रूहानियत का ताल्लुक, तरीकत का ताल्लुक, शरीयत का ताल्लुक, विलायत का ताल्लुक, ये सलूक की राहें, इनका ताल्लुक मानने से। करते रहे, डरते रहे, मांगते रहे, मानते रहे। ये बड़ों की बात बता रहा हूं, ये बड़ों की बात बता रहा हूं। बस ये जिंदगी की राहें, और ये बात आज पीर अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है, हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि रूह की दुनिया, विलायत की दुनिया सारी रब की खिदमत में है। خدمت الف اللہ چمبی دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہو. چمبا چمبیلی بڑی خوشبو مہک ہوتی ہے. میرے من میں مرشد نے لگائی نفی اسباب دا پانی ملیا. نفی اسباب لا الہ الا یہ نفی اسباب. نفی اسباب فرمایا دیکھ میں نے پودا لگا دیا ہے, اب نفی اسباب کرتے رہنا, ذکر تسبیح سجدے اعمال حلال حرام کی پہچان, جائز ناجائز کی پہچان, یہ نفی اسباب کرتے رہنا. نفی اسباب کا پانی ملیا کہ ہر رگے ہر جائی ہو, رگوں میں ہی وہ پانی چلا گیا, اندر بوٹی مشک مچایا. وہ پیدا ہوئی, وہ بڑی ہوئی, اس کی خوشبو بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن. کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. اندر بوٹی مشک مچایا کہ جان فلنتے آئی ہو, اندر خوشبو ایسی پھیلی. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین. اندر بوٹی نے فرمایا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ, میں بصرہ میں ان کی زیارت کر کے آیا ہوں بصرہ میں ابھی, فرماتے ہیں مومن کے دل میں ایمان کی خوشبو, فرمایا اگر اللہ اس کا ذرہ بھی زمین پہ ظاہر کر دے, یہ اندر بوٹی مشک مچایا. اللہ کے ولیوں کی باتوں میں بڑے بڑے راز ہوتے ہیں, دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلان دیاں جانے ہو. اندر بوٹی مشک مچایا. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے ایمان کے ذرے کو اگر اللہ اس کی خوشبو کو کھول دے, جاگتے رہیں سنتے رہیں کھول دے, تو فرمایا پوری دنیا میں خوشبو ہو, چاند کی چاندنی ختم ہو, سورج کی روشنی ختم ہو, اس نور میں اتنی روشنی ہے اور پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے. مومن کے دل میں ایمان کی خوشبو اتنی زیادہ ہے. اندر بوٹی مشک مچایا تو جان پھولن پہ آئی ہو, تو مرشد باہو ہر دم جیوے جائے بوٹی لائی ہو. اے اللہ میرے مرشد کو آباد و شاد رکھ. اٹھ یار فرید تھی شاد ول, مجھا کو نہ کر یاد ول, اے چھوٹاں تھسن آباد ول. واہ سبحان اللہ. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہ مرشد باہو ہر دم جیوے جائے اے بوٹی لائی. ریاضتیں ریاضتیں. اچھا میں تھک جاتا تھا, چل ادھر بھاؤ ادھر بیٹھتا تھا. سچی بات ہے حقیقت میں مجھے ایک تو میں نے کہا کرسی لے آؤ, کرسی بیٹھ, ایک لکڑی کا تنا پڑا تھا پھر میں اس میں بیٹھ گیا. حقیقت میں میرے کانوں میں کہتا تھا طارق تھک گیا ہے, میرے مرشد کی ایک مخصوص آواز ہے. آج بھی 1991 کے بھی سال کے بعد کبھی کبھی راتوں کو جاگتے ہوئے میری آنکھیں کھلوا دیتی, ایک دم ایسی نظر ہوتی مرشد. زندگی کا ایک سفر مسلسل ریاضتوں میں ہے, زندگی کا ایک سفر مسلسل ریاضتوں میں ہے, مسلسل ریاضتوں میں ہے, مسلسل ریاضتوں میں. اور یقین جانیے جتنے بھی آج گدی نشین سجادہ نشین درباروں کے ارب پتی کروڑ پتی, کوئی کرونے کوئی 9/11 کوئی مہنگائیاں ان پہ اثر انداز نہیں ہوئی. ہوئی ان کے گھر میں جھی گھی کے چراغ جلتے ہیں, اس کی بنیادیں وہ لوگ تھے جو آج آپ بیٹھے ہیں, جنہوں نے اللہ کے لیے مشقت کی, کوئی دم کے لیے دور سے چل کے آیا, کوئی یہاں وقت لگانے کے لیے, اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, اپنی مشکلات مسائل کے حل کے لیے مجاہدوں اور مشقتوں کی شکل میں مرد اور عورت جتنے بھی ہیں آئے. कोई ठोकरें खाता हुआ, कोई धुंध से लड़ता हुआ, कोई लोगों के ताने सहता हुआ, लोगों की नागवारियां सहता हुआ, कोई यह सुनता हुआ कि हकीम तारिक तो देवबंदी है, वजदी है, वहाबी है, शिया है, बरेलवी है, अहले हदीस है, अब पता नहीं कितनी बातें सुनता सुनाता हुआ और अपने दिल को बहलाता हुआ आया और रहा। और ये जिंदगी की नागवारियां, ये रियाजतों का सफर चलता रहा, पर तस्बीह और तस्बीह खाने को न छोड़ा और निस्बतों को न तोड़ा। रब करीम के फैसले होते रहे, एसीआर रिपोर्ट बनती रही। एसीआर समझते हैं, अफसरों की एक रिपोर्ट होती है खुफिया, वो बनती रही। जिस वक्त अल्लाह पाक का निजाम चला, मेरे अल्लाह ने कहा ठीक है, इसके लिए नहीं, इसकी इतनी नस्लों के लिए वसी रिस्क लिख दो, राहत लिख दो, रहमत लिख दो, वुस्सत रख दो, दुनिया सारी महंगाइयों में आए जाए लेकिन इनके घर घी के चराग लिख दो। ये मुजाहिदे, ये मुशक्कतें, ये नागवारियां, ये गिरी बड़ी चीजों की कदरदानी, ये नागवारियां, ये मुजाहिदे, ये मुशक्कतें मेरे अल्लाह के हां निहायत पसंदीदा अमल है। और फिर लगे रहना कभी लंगर पे, कभी सफाइयों पे, कभी खिदमत पे, कभी पहरे में, कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी तार में, कभी कंप्यूटर में, कभी नेट में, कभी किसी दुनिया में जो लगा हुआ है और नागवारियां बर्दाश्त कर रहा है। कोई उससे सलाम नहीं कर रहा, कोई उससे हाथ नहीं मिला रहा, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। ये आज का सबक सारा अल्लाह पाक जजाए खैर अता फरमाए, ये इन औलिया सुलहा को जिन्होंने हमें सबक याद कराया, ये विलायत के ताजदार, ये कलंदर, ये नकीब, ये नजीब, ये अबरार, ये गौस, ये अबदाल, ये इन्होंने हमें ये सबक याद कराया। और ये याद कराया कि ख्याल करना, रियाजतों से ही जिंदगी भर तेरी और तेरी नस्लों को सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। कभी महसूस किया आपने अल्लाह के वलियों के जितने भी बड़े बड़े हैं वली, उनके इर्द गिर्द मजारात के इर्द गिर्द, उनके मजार के इर्द गिर्द कब्रिस्तान बड़े बड़े होते हैं, लोग वहां दफन होना पसंद करते हैं। चाहे क्यों, क्या पता इनकी वजह से मेरी बख्शिश का सामान हो जाए, मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। अल्लाह के हां वो इतने पारिस बन जाते हैं, वो जिंदगी में भी पारिस होते हैं, वो मौत के बाद, विसाल के बाद, जिसे हम विसाल कहते हैं। क्यों, क्यों हमारे ये अकीदे में शामिल है, बाद अज विसाल अल्लाह के वली से फैज मिलता है, अल्लाह के वली से फैज मिलता है बाद अज विसाल भी। पारिस बन गए हैं, वारिस बन गए। ये बना किस पे, मुसलसल मुजाहिदों, कुर्बानियों और खिदमत के नाम पे जो नागवारियां और चोटें लगी, और वो सहते भी रहे, सुनते भी रहे, चलते भी रहे, ना मुकाबला किया ना तकाबुल किया, हां और हर हाल में चलते रहे। हाल बड़े आए, इसे लफ्ज जो कहते हैं ना हर हाल में, हर हाल में जो लफ्ज कहा जाता है, हाल आए पर हर हाल में चलते रहे और सफर जिंदगी का तय करते रहे और अल्लाह की बारगाह में उनके सफरनामे लिखे जाते रहे। और वो कुरान का फिर लफ्ज आया कि खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे, दीवार गिरने वाली है और हजरत खिज़र ने दीवार को ठीक किया फिर से ताकि गिरे ना। और मूसा ने पूछा, खिज़र आपने ये दीवार क्यों सीख की, फरमाया इनका अब्बा नेक था और अब्बे की नेकी का असर यह है कि इस दीवार के नीचे खजाना था, अगर गिरती खजाना जाहिर हो जाता, बच्चे यतीम हैं, छोटे हैं, बड़े होना है इन्होंने और इनका अब्बा नेक था। इब्ने कसीर ने लिखा है रिवायात में, वो अब्बा नहीं जो अब्बा था जिसके यतीम बच्चे थे 7 नस्लों पहले वाला अब्बा, दादा दादा दादे का दादा दादे का दादा दादे का दादा वो सात नस्ल पहले वाला अब्बा, उस अब्बे की जो नागवारियां सालहियत की वजह से थी, इबादत और खिदमत की वजह से थी, अल्लाह के यहां कबूल होती रही होती रही। अल्लाह तो चाहता उन बच्चों को, खिजर इस्लाम को फरमाता इनका कुरान फटा हुआ उसको जरा टेप लगा दें ताकि ये बच्चे कुरान पढ़ते रहे, फिर नहीं मिलेगा। मेरे अल्लाह ने दिखाया नेकी और खिदमत, और नेकी और खिदमत पे जो नागवारियां आती हैं अल्लाह इसकी वजह से नस्लों के खजाने महफूज रखता है ताकि सुख से बैठ के खाएं, ताकि चैन से बैठ के खाएं, ताकि नस्लें खुश रहें। मैं उस दिन अपने एक पुराने जानने वाले थे उनके घर गया, बच्चों का हाल पूछा, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। बच्ची का हाल बताया ना तो एक नस कहा मुझे, बच्ची का हाथ बताते हुए कहा उसकी शादी हो गई है, छोटी सी बच्ची होती थी 5-6-3-4 साल की, शादी हो गई। मैंने कहा खैरियत से? उसने जो लफ्ज कहा ना वो लफ्ज सुनिए, हाँ ठंडी हवा आ रही है। क्या लफ्ज कहा? सारी जिंदगी उस बेटी के सारे घरेलू निजाम को दो लफ्जों में मुझे बताए, हाँ ठंडी हवा आ रही है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो जिंदगी का सफर तस्बीह खाने का और तस्बीह खाने के साथ चल रहा, और आप मुजाहदे और कुर्बानियों के साथ तस्बीह खाने की निस्बतों को लेके चल रहे हैं, ये नस्लों के खजाने महफूज रखता है और नस्लों से फिर ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं। आपका क्या ख्याल है? दूर परे से चल के दम के लिए आए, तस्बीह खाने की निस्बतों को लेने आए, और या तस्बीह खाने में चंद दिन चंद हफ्ते चंद महीने गुजारने आए, या खिदमत के किसी शोबे में लगे हुए हैं, क्या ख्याल है मेरे अल्लाह के हाँ इसकी क्या हैसियत, क्या वकार और क्या मकाम है, अल्लाह के हाँ इसका क्या मर्तबा है, और अल्लाह के हाँ इसकी क्या कीमत है। और उसकी कीमत कुरान बता रहा है, दीवार गिरने वाली है, खजाना नीचे है, अगर गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता, तो हुक्म हुआ इस दीवार को सीधा कर दें, बना दें, ठीक कर दें। क्यों? इनका अब्बा नेक था, और नेकी से मुराद उसने नागवारियां, सर्दी गर्मी, ठोकरें, पर गुलामी को ना छोड़ा। उसका सिला क्या मिला? रब ने खजाने महफूज कर दिए। जिंदगी में आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ आप कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे बरकतें पा रहे, ना ना, आपका अमल आपकी नस्लों में मुंतकिल हो रहा है, आपकी मुजाहदे, आपकी कुर्बानियां, आपकी खिदमतें, आपकी सर्दी गर्मी, आपका तस्बीह और तस्बीह खाने के साथ ताल्लुक, चाहे दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं आप, दुनिया के जिस हिस्से में बैठे हैं, आपका तस्बीह और तस्बीह खाने के साथ निस्बत, अबकरी के साथ निस्बत का ताल्लुक अकेला आपके लिए नहीं है, अकेला आपके लिए नहीं है, आपकी नस्लों के लिए है, आपकी नस्लों के लिए है। और यह बात भी जहन रची रखिएगा, और मेरी इस बात के बाद सोचिएगा जरूर जो अभी मैं अर्ज करने लगा हूं। बड़े बड़े ऐसे लोग आपने देखे थे, देखेंगे, सुने हैं, बड़े बड़े लोग जो विरसे, बड़े बड़े दौलत के खजाने, जागीरें, माल, चीजें छोड़ कर गए, पर कुछ अरसे के बाद नस्लें फकीर हो गईं। जो रूहानियत के ये विरसे छोड़ कर गए उनकी नस्लें फकीर हो गई। आप देखें, बहुत से देखें, आपको जगह जगह पे ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़ी बड़ी जागीरें माल छोड़कर गए। मैं झंग जा रहा था, चनियोट जा रहा था, चनियोट, एक दुर्वेश थे चनियोट में, मैं उनके यहां जा रहा था, मुझे एक साहब बताने लगे ये जागीर इस पे घोड़ी चलती थी, एक महीना भी घोड़ी चलती रहे तो वो उसकी जागीर खत्म नहीं होती थी। आज उस बंदे के पास एक बालिश एक फुट जगह नहीं है, और उसकी नस्लें गुर्बत आकोर तंदस्ती में। ढाका में एक बाजार है खानम बाजार, ढाका में एक बाजार है खानम बाजार, एक बेटा था एक बेटी थी, दौलत माल क्या था? वहां भी यही हाल था कि घोड़ी अगर चलती रहे महीनों और दौलत के अंबार, माल और जागीरें, पर उसके पास जो बरकत आप तलाश कर रहे हैं, ये नागवारियों को बर्दाश्त करके तस्बीह और अबकरी की निस्बत ये नहीं थी। मकसद ये नहीं कि तस्बीह खाने के साथ, मकसद यह है कि रूहानियत के साथ जिंदगी का निस्बत और ताल्लुक नहीं थी। तस्बीह खाना तो उस दौर में था नहीं, लेकिन तस्बीह खाना हर दौर में रहा है। इन फकीरों के ये आस्ताने हर दौर में रहे हैं। निस्बत नहीं थी, निस्बत नहीं थी। कुदरत का निजाम देखें, कुदरत का निजाम देखें। उस दौर में नई माचिस ईजाद हुई थी। बेटे को शौक पड़ गया माचिस जलाने का। माचिस जलाता उसका जो बारूद और धुआं होता वो उसको अच्छा लगता था। और बेटी को शौक पड़ गया कपड़े फाड़ने का। रेशम के कीमती थान आते थे और वो बैठ बैठ के फाड़ती थी, टुकड़े टुकड़े करती थी उनके लीरे लीरे टुकड़े टुकड़े करती थी। उस आवाज में उसको मजा आता था और यूं सारी दौलत चल गई। और वो फिर वो बेटी थी जिसको खानम कहते थे, एक बाजार के कोने में खड़े होके मांगती थी, लोग मैं उसकी बेटी हूं, आज भूखी हूं, मुझे दो दो, मुझे दे दो। उस बाजार का नाम खुद खानम बाजार था। तो तिल मुल्क मंतशा व तंज उल मुल्क मिन मंतशा व तो इज्ज मंतशा व तो जिल मंतशा। ये है जिंदगी। लेकिन लेकिन कुरान एक अनोखी दास्तान सुना रहा। और आज अल्लाह जजाए खैर दे पीर अली हजवई रहमतुल्लाह को अनोखी दास्तान सुनाई। जो नागवारियां खिदमत में ईमानदारी के साथ खिदमत में चलते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं ईमानदारी के साथ, मेरा अल्लाह कहता है उनकी सात नस्लों के बाद भी मैं उनके विरसे उनके खजानों की हिफाजत करके दिखा। क्या ख्याल है आपकी ये खिदमत सिर्फ इसी दुनिया के लिए है, आपके लिए है? नहीं, ख्याल कीजिएगा आपकी आखिरत के लिए भी है और आपकी नस्लों के विरसे हैं, आपकी नस्लों के विरसे हैं। रिस्क, दौलत, इज्जत, सुकून, चैन, राहत, रहमत, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबी विरसे हैं, विरसे हैं। हाँ हाँ, विरसे। कभी भी अगर खिदमत के दौरान कोई शोबे की खिदमत है, हत्ता के तस्बीह खाने में आना खुद खिदमत है, तस्बीह की निस्बत खिदमत है, अबकरी की निस्बत खिदमत है, दर्स सुनना वजीफा करना भी खिदमत है, अबकरी पढ़ना भी खिदमत है, लोगों को खैर फैलाना अबकरी की बात बताना भी खिदमत है। कभी इस खिदमत के करते हुए आपको लोगों के ताने बातें, लोगों की चीजें अगर सुनने को मिले, मायूस ना हुआ करें। इंसान है, दिल बुझ भी जाता है, दिल खिल भी जाता है, कभी ना बुझा करे दिल। और बड़े बड़े सफर और जिंदगी के लंबे सफर तय करने हैं, अपने अज़्म, अपने हौसले, अपनी हिम्मतें, अपने जज्बे हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रखें, बेदार रखें। करेंगे इन जज्बों को हमेशा ताबिंदा, जिंदा, आबाद और शाद रखेंगे। क्यों? ये जो कदम आपके उठे हैं तस्बीह और तस्बीह खाने अबकरी के लिए, या दुनिया के जिस कोने में बैठे आप अबकरी से अपनी निस्बतों को जिंदा रखे हुए हैं, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए है तो आपकी नस्लों के लिए भी है, और आपके लिए है तो आपकी नस्लों की नस्लों की नस्लों के लिए भी है। और जिंदगी का सफर इसी तरह तय करते करते कामयाबियों के सेहरे पहने इस दुनिया में भी आखिरत में इंशाल्लाह चलते रहेंगे। इस जिम्मन में कोई सवाल, रूहानी दुनिया का कोई सवाल? जी कहते हैं दिल अगर बंद हो उसको कैसे खोला जाए? रूहानियत के लिए दिल ऐसे बंद हो गया, उसको खोला कैसे जाए? उसको खोला जो है, सबसे ज्यादा जो खोला जाए, आप ये देखें जिन इबादतों पे मुजाहदे और मशक्कतें ज्यादा हैं, नागवारियां ज्यादा हैं, उन पे वादे भी ज्यादा हैं। मैं सिर्फ दो मिसालें देता हूं। एक रमजान के रोजे सख्त गर्मी के, सख्त हब्स के, और लंबे दिन 16-17 घंटे का दिन, और एक हज। आप देखिए उसके वादे से आता है, क्योंकि तबीयतों में आए जन्नत से हैं, निकाला हमको जन्नत से, दिया फिर शौक जन्नत का, ये हैरानी नहीं जाती। आए जन्नत से हैं, तबीयत जन्नत के मजे चाहती है, और अल्लाह ने थोड़ा सा वक्त दे दिया ये जिंदगी में कि नागवारियां बर्दाश्त करके हमेशा के मजे लें। अब वो तबीयत चाहती है यही जन्नत बने। मुझे अभी एक बंदे ने, हमारे एक साथी गए स्विट्जरलैंड, मैंने उनको स्पेशल बुलाया कि मुझे हाल हवाल सुना, मुझे अजीब हाल सुनाया, कहा स्विट्जरलैंड में बेहयाई नहीं है, और भूटान, बांग्लादेश और इंडिया के हिंदू बाबे सारी उम्र पैसे जमा करते हैं, गरीब जैसे हमारे यहाँ पैसे जमा करके हज करने जाते हैं, वो स्विट्जरलैंड देखने जाते हैं, चलो दुनिया की जन्नत तो देख लें। कल मैंने वहां देखे बाबे, वहां बेचारे बूढ़े बूढ़े, उम्रें सारी जिंदगी, महंगा मुल्क है, पैसे जमा कर करके दुनिया की जन्नत देखने जाते हैं, क्योंकि जन्नत से आया है, दुनिया में जन्नत चाहता है। इसका हल यही है, इन खिदमत की नागवारियों में, तस्बीह खाने की निस्बत की नागवारियों में, इन वजीफों की नागवारियों में, इसमें लोग ताने भी दें, ठोकरे भी मारें, बातें भी करें, अम्मा भी अब्बा भी या रिश्तेदार या दोस्त कहां फंस गया, कहां जा रहा, चलते रहें, रब अपनी रहमत से तेरे इस कुर्बानी और मुजाहदे की बरकत में दिल की दुनिया एकदम ऐसे खुलेगी जैसे बटन ऑन रोशनी। और किसने भी फैसला किया, मैंने पंजाबी ही बोलनी है, फैसला किया है बंदा ना, उसके फैसले को तो तोड़ नहीं सकता, चाहे सारी दुनिया को समझ आए ना आए। कहते जमाइयां आती हैं अमल के दौरान, जमाइयां आती हैं, तो अपनी सुस्ती को खत्म कर लो, अपनी चुस्ती को मुतवज्जे कर लो। इसलिए शरीयत ने छींक को पसंद किया है, जमाई को ना पसंद किया, बस खत्म। और सवाल, खुद गर्जी और मुनाफकत से कैसे बचा जाए, सारी उम्र की मेहनत है, जवान शौक जो नौजवान को, कितने साल के हो, 16 साल का जवान है, उस शौक नौजवान को नसीहत में क्या करो। कहते खुद गर्जी और मुनाफकत से कैसे बचा जाए, उस शौक नौजवान को नसीहत में क्या करूं, बरसों किसी की ताक में दीवाना मैं भी था, बरसों किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पे जिसने दी जवानी। अरे लोगों देखो ये क्या जुल्म कर रहा है, अरे लोगों देखो ये क्या जुल्म कर रहा है, किसी मरने वाले पे मर रहा है। कहते खुद गर्जी और मुनाफ़, अब तो शेर की आमद शुरू हो गई कि मैं उससे हटा हूं एकदम, वरना तो ये फिर अशार की पिटारी खुल जाती है। कहते खुद गर्जी और मुनाफ़कत से कैसे बचा जाए, सारी जिंदगी की मेहनत है, सारी जिंदगी। फूलों को तराशते हैं, कभी किसी ने झाड़ियों और कांटेदार चीजों को भी तराशते खराशते और सवारते देखा, ये सारी जिंदगी अखलाक की मेहनत है, सारी जिंदगी की मेहनत है, करते 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 जिंदगी गुजर जाए, कमी रह भी जाए, अगर अगर जज्बा सच्चा है और इंसान ना चाहता है, अल्लाह कमी को पूरा कर देता है, और इंसान कहे कि मैं भी चाहूं और कमी भी चाहे तो अल्लाह दिनों के भेद जानता है, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तो कुछ चाहता ही नहीं था। सारी जिंदगी, और ये मिलेगी कहां, इन रूहानियत के हल्कों में, मुझे भी आपको भी, मुझे भी आपको, इन रूहानियत के हल्कों में ये कमियां पूरी होंगी। मेरे बेबहा लोग मिले, अभी हजवेरी महल में भी मैंने लोगों से सुना, कहते हैं बस हमने क्या सोचा था, हमने क्या फैसला किया था, अबकरी तस्बीह खाने ने हमारे फैसले बदल दिए, मेरे मन में थी बड़ी चाहते, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। और सवाल नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह का जिक्र करते वक्त वसवसे आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, तो आपको मुबारक आते हैं तो आपको मुबारक। कभी गुनाह करते वक्त भी वसवसे आते नहीं आते? चोर कहां आता है, गरीब के पास या दौलतमंद के पास? लगता है तेरे पास तो दौलत है, हाँ हाँ लगता है रूहानियत की दौलत। मुझे कई लोग कहने लगे, घर वालों के बारे में खास तौर पर, मुझे एक जवान कहने लगा मैं बिल्कुल नेक हो गया हूं, घर वाले मुझ पे चढ़ गए। पहले बदतमीज था, आलमी बदतमीज था, इंटरनेशनल बदतमीज था, सारे दबे दबे रहते थे। अब मैं जब से तस्बीह खाने में निस्बत है, अखलाक ईमान रख रखाओ हर चीज मैं संभालता हूं, घर वाले मुझ पर चढ़ गए। मैंने कोई बात नहीं, फकीर बन के मैं उसके चेहरे को देखा, उसको मेरी बात समझ नहीं आई। कुछ अरसे के बाद मिला मुझे, मैं लगे जी आपने तो बात कही थी मैं आपसे माफी भी मांगता हूं, मुर्शिद हैं आप। मैं घर जाके बदतमीज बन गया, घर वाले हैरान हो गए। पहले मेरा मिजाज था रोटी सामने होती थी थोड़ी सी पिछली, वो रोटी वहां वो क्या गुड्डी कहां डोर, रोटी उधर हर चीज उधर, गिलास उधर, फ्रिज को धक्का दिया फ्रिज उधर, चीज उधर, हर चीज टटे पोटे कर दी टुकड़े टुकड़े। घर वाले आते हुए डरते थे कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। कहने लगे मैं मिस्कीन बन गया, घर वाले मुझ पर चढ़ गए, तेरे पीर की भी ऐसी तैसी करे, आपको भी गालियां मुझे भी बुरा भला, पीर ने तुझे क्या कर दिया, ना अहल बना दिया, सुस्त बना दिया, हट हराम बना। लगे मैं कुछ भी नहीं करता था, सारे मेरे सामने करते, सब कुछ करता हूं। अरे मैं उल्टा हो गया, मैंने कहा 40 दिन का उल्टा चिल्ला करना है 40 दिन का उल्टा चिल्ला। भाई रहमतुल्लाह साहब ना ऐसी किताब लेके सिद्दीकिया मस्जिद क्वेटा में फजाइल अमाल उल्टी पढ़ रहे थे, क्योंकि हल्के में बैठ बैठ के सारी हदीसें याद हो गई थी। तो उन्होंने कहा भाई रहमतुल्लाह अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़ है भाई रहमतुल्लाह, आप किताब उल्टी पढ़ रहे हैं। कह रहे हमने उल्टी पढ़ने की मश्क की हुई है। कह रहे मैंने उल्टा चिल्ला किया, मैंने कहा चिल्ला एक दिन दूसरे दिन, आखिरकार सारे घर वाले कहने लगे तेरा पीर भी सच्चा तू भी सच्चा मान से वैसा हो। उन्होंने कहा ना चिल्ला पूरा करना, मैंने कहने लगे अब आपको बड़ा मानते हैं कि तेरे पीर ने तो तुझे बदल दिया था, तुझे क्या हो गया? उन्होंने कहा मेरे पीर ने तुम्हें बदल दी थी, अब जो बदला है तुमने बदला है मुझे, मैं हया वाला हो गया था तुम बेहया हो गए, मेरे अंदर शर्म भरम था तुम बेहया और बेशरम हो गए। मैंने कहा ना कर ऐसा, चलो कोई बात नहीं माफ कर दे, वो फिर बदल गए। लेकिन ये उल्टा चिल्ला आपने नहीं करना, वादा करें इंशाल्लाह। तो क्या सवाल था वाला? बस मुझे याद है आप दौलतमंद हैं, चोर वहीं आता है। अब पता है इसका तरीका क्या है? तवज्जो ही न करें, खत्म, बस कोई तवज्जो ही ना, अपना काम करते जाएं। मैं हजवेरी महल में वहां जा रहा था, आगे एक कुत्ता भागा, एक मोटरसाइकिल ठहर छोड़, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, एक जगह मैं जा पैदल जा रहा था, कुत्ता भागा, मैं खड़ा हो गया, कुत्ता भी ठहर गया। फिर मैंने उसके तरफ तवज्जो नहीं किया, ऐसे ऐसा चलना शुरू कर दिया, वहीं ठहर गया। ये कुत्ते भागते रहेंगे भौंकते रहेंगे, तेरी जिंदगी का सफर रवान रवान है। वसवसे आते हैं भाई, तेरे पास कुछ है तो आते हैं, इससे पहले नहीं था। देखो ना सवाल देखें, जब मैं नेकी करता हूं नमाज पढ़ता हूं वसवसे आते हैं, ये सवाल तो नहीं है जब मैं बुराई करता हूं वसवसे आते हैं। अब सवाल देखें उसका जवाब क्या है, कि तेरे पास कोई रूहानी दौलत है तो आते हैं, क्योंकि ये फुटपाथों के सोने वाले बंदों के पास तो कोई चोर नहीं आता। मैंने एक पोस्ट देखी थी, मुझे एक बंदे ने दिखाई, एक बंदे ने अपने अजारबंद के साथ जूती बांधी हुई थी, उसका था ही यही कुछ, शिलवार का अजारबंद है ना, उसके साथ जूती बांध के सो रहा था, किसी ने मोबाइल पे लेके फेंक दी, उसकी दुनिया ही यही थी, लिहाजा वो कहते हैं बस वैसे ना आए। उसने वो बस बस हजार मन से बांधे हुए थे।
आपके पास तो रूहानियत की दौलत मिल गई है, खाते हैं तो आने दें। बस आखिरी सवाल किसका?
हाँ ये सवाल मिल गया आपको?
नहीं भाई, ये इस वक्त वजीफों का सवाल जवाब नहीं शोभा।
हाँ जी
देखो, नशिश देखो, उसके सवाल देखो। अच्छा आखिरी सवाल, उसके बाद हमने अगले रूहानी पैकेज इंशाल्लाह चलाने हैं।
कहते हैं मुर्शिद की क्या सवाल थी? मुर्शिद के तवज्जुहात पाने के लिए
हाँ क्या करना चाहिए? बैठो। देखो भाई, सबसे पहले तो ये बात बता दो,
मुर्शिद की तवज्जुहात जिंदगी का आखिरी और पहला सरमाया है, पर वो मुर्शिद के पास होती नहीं है। एक देहाती गया शहर में, बेचारा तो देहाती था, उसने देखा है कि टूटी नलके से पानी आ रहा। बड़ा खुश हुआ उन्हें कि ये तो अंग्रेज ने बड़ी इजाद कर दी। उसने कहा ये कहां से मिलती है टूटी? अब वो टूटी लेके गांव में आया खुशी 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 खुशी। उसने आके ना टूटी लगा दी दीवार के अंदर, कह रहे ओ जितने घड़े मशके पानी भर, टूटी को पानी ना आए। कहने लगा पैड़ा लूटी गई, शहरी ने मुझे लूट लिया, वो असली टूटी नहीं थी जिसमें से पानी आता था। असली टूटी नलका नहीं दिया जिसमें से वो पानी आता था। अब वो शहर में गया, उसने कहा वो असली दे जिसमें से पानी आता है। उसने देखा वो कहानी कुछ ना कुछ समझ गया। उसने कहा इसके पीछे पाइपलाइन सीवरेज, या वो सीवरेज नहीं पाइपलाइन का निजाम, पानी की टैंकी, पानी का कोई, उसने कहा वो तो नहीं था। ऐसे ही जो मुर्शिद होता है ना, इसका सब कुछ अपना नहीं होता, ये निस्बतें जुड़ी हुई होती है। 25 दरवेशों ने मुझे खिलाफतें दी, उनकी तवज्जोहात मेरे साथ हैं और मेरी औकात जीरो है, लेकिन मैं डाकिया हूं। तो डाकिया के पास अपना कुछ नहीं होता, ना वो दावे करता है, पर मिलता डाक मिलती डाकिये से है। जो मेरे साथ बड़ों की निस्बतें जुड़ी हुई हैं, उन निस्बतों की वजह से तवज्जोहात से हैरत अंगेज पैदा होता है। यहां तक सुना है कि अपनी मेहनत 99% और मुर्शिद की तवज्जो 1% काम नहीं बनेगा। मुर्शिद की तवज्जो निगाह दुआ 99% और अपनी मेहनत 1% काम बन जाएगा। पर मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। और तवज्जोहात लेने के लिए अपने दिल को वसवसों से पाक रखें, तवज्जो ना करें। सुनी सुनाई लोगों के इल्जामात कहानियां, इनकी तरफ तवज्जो ना दे और अपने सबक पे चलता रहे। घर वालों में अगर सख्ती है तकाबल ना करे। मुआशरा अगर मुर्शिद को और तुझे बुरा भला कहता है मुकाबला ना करे, दरगुजर करे, उनका एहतराम करे। और निस्बत तस्बीह और तस्बीह खाने से जुड़ा रहे। रब शहंशाह करीम है, किसी की कुर्बानी को जाय नहीं करता, किसी की कुर्बानी को जाय नहीं करता। अब अगला हमारा अमल नमक है। नमक को जो है मैंने दम करना है और इसी के साथ आपको भी दम होगा और पूरी दुनिया में जितने हजरात बैठे हैं वो भी दम होंगे, जो तस्बीह खाने में हैं उनको भी दम होगा, आपका भी दम होगा, यानी आपको दम होगा, अभी इनफरादी दम हो चुका, भी इज्तिमाई दम होगा और पूरी दुनिया में ऑनलाइन लोग इंतजार कर रहे उनको भी इसमें आजम का दम होगा। और ये नमक है जिसको आप जाते जाते अदब एहतराम से चुटकी लेके जाएंगे, कोई हमारी बेहतरामी से नीचे चुटकी ना गिर जाए, चुटकी जो है वो नीचे ना गिर जाए, अदब से एहतराम से ये लेते जाएंगे। अपने मकासद अपनी मुश्किलात परेशानियों का तसव्वुर करें, सर झुकाएं, अल्लाह की तरफ ध्यान दें। असल में दम इसमें आजम है और अल्लाह के नाम की बरकतों से मिलता है। तो पूरी दुनिया
आप और नमक पे मैं दम कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब हमारा जो है एक अमल है जो पिछली दफा हमने किया था, दायां हाथ सर पे रखेंगे और अल्लाह पाक के पांच नाम पढ़ेंगे। उसका तरीका यह है कि आफते बलाएं आसमानों से आती हैं हमारी कोताहियों गुनाहों खताओं की वजह से, उससे आफते दाएं बाएं आगे पीछे जो आफते बलाएं आती हैं, इसमें तसव्वुर अपना, अपनी नस्लों का, अपने घर का, अपने माल का, अहलो अयाल का, अपनी चीजों का, अपने सवार सवारी का, अपने जिस्म का, अपनी बीमारियों, जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाकामियों परेशानियों मसाइल मुश्किलात उलझनों का तसव्वुर करेंगे, बहुत ज्यादा तवज्जो करेंगे और सर पे हाथ रख के, दायां हाथ सर पर रख के ये तसव्वुर में डूब के ये आपके गिर्द गिर्द हिफाजती, आपके इर्द गिर्द हिफाजती नूरानी और रूहानी कड़ा है और हिफाजती हिसार है और जो है ये हिफाजत की रूहानी डिफेंस वाल दीवार है। बलाएं आफतें और मुश्किलें तली रहती हैं इंशाल्लाह और दूर रहती हैं, दूर रहती हैं। इस कैफियत के साथ आप ये 11 बार पढ़ेंगे, सर पे हाथ रखें डूब जाएं पर मेरे साथ पढ़ें, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम। आमीन। मुबारक अल्लाह पाक की रहमत है, बहुत बरकत वाला अमल है, बहुत बरकत वाला, हिफाजत वाला, खास तौर पे आफतों दुश्मनों परेशानियों जादू जिन्नात हादसों। अब एक मगफरत का अमल है, हमने दिल पे उंगली रखनी है और तसव्वुर में यह है कि यह मुर्शिद ने उंगली रखी हुई है और दिल पे उंगली रखनी है, दिल पे उंगली, और हमने 11 बार जो है पहला कलमा पढ़ना और ये अमल खवातीन मर्द हर हालत में कर सकते हैं।
हर हालत में कर सकते हैं। एक तो दिल आबाद और शाद होगा, दिल की वीरानी खत्म, दिल में नूर, और खास तौर पे ये अमल स्ट्रेस, टेंशन, ज़हनी दबाव, तनाव, खिंचाव, लाइलाज बीमारियां, और आखिरी वक्त में कलमा, और अपने लिए और अपने प्यारों के लिए तसव्वुर करके पढ़ें। बज़ाहिर हम 11 बार पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मजमा है सैकड़ों हजारों लाखों दफा हो जाए और आपके 70,000 के निसाब बनते जाएंगे तस्बीह खाने में हाजिरी की वजह से, और आखरत का बख्शिश का सामान भी, और 70,000 निसाब जो बंदा पढ़ लेता है उसकी मुश्किलें फौरन दूर हो जाती हैं, उसके काम बन जाते हैं, उसकी उलझने खत्म हो जाती हैं। अजीब इसके फजाइल और फवायद हैं। है सिर्फ 11 बार कलमा, पर कलमा कायनात का सबसे कीमती कलमा है। तो तसव्वुर तवज्जो के साथ दिल पे उंगली रख के, बाएं तरफ दिल है हमारा, बाएं तरफ दिल पे उंगली रख के पूरे तसव्वुर के साथ 11 बार हम कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, اللهم لك الحمد ولك الشكر। बहुत जबरदस्त अमल किया, बहुत मुबारक अमल किया। अल्लाह पाक की रहमत हो, अल्लाह का फजल है कि ये अनोखा अमल है, बहुत बरकत वाला, और ये हर महीने कशफुल महजूब के हलके में ये सिलसिले चलते रहेंगे, आप आते रहेंगे और फैज पाते रहेंगे। अब कबूलियत का एक अमल है जो बहुत मुबारक है, शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह का अमल। और इससे पहले हमने क्या पढ़ना है, पिछली दफा क्या पढ़ा था? हाँ, कहां लिखा हुआ दिखाए। अच्छा, तो क्या पढ़ना है? अवला कर 3 दफा दुरुस्ती, 1 दफा अलहमद शरीफ, 3 दफा कुल्लो वाला पढ़ के इन शिजरे की हस्तियों को देंगे और इनकी कबूलियत से दुआ यकीन जानिए निशाना है। जो मुराद, जो झोलियां, अल्लाह को पढ़े वाला कर 3 दफा दुरुशी, 1 दफा अलहमद शरीफ, 3 दफा कुल्लो वाला, अल्लाह मुसले। मैं इन हस्तियों के नाम पढ़ता जा रहा हूं, आप इनको यह हदिया देते जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही बेहुरमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत अली करमल्लाहु वजहो, हजरत हसन बसरी, हजरत हबीब आजमी, हजरत दाऊद ताई, हजरत मारूफ करफी, حضرت سری سختی، حضرت جنید بغدادی، حضرت او بکر شبلی، حضرت عبدالعزیز تمیمی، حضرت عبدالواحد تمیمی، حضرت ابوالفرح کرتوسی، حضرت علی بن احمد حسکاری، حضرت شیخ ابو سعید المبارک المخزومی، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ ابو سعود ابن شبلی، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زائد، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت ابو علی شقیق بلخی، حضرت ابو تراب عسکر، حضرت ابو عمر ستخری، حضرت جعفر، حضرت ابو عبداللہ حبیب، حضرت حسن، حضرت ابو اسحاق، حضرت ابو نفتہ، حضرت ابو الحسن علی بن محمد بصری، حضرت ابو الفتح محمد بن قاسم، شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہدیہ کر دیا آپ نے ان سب ہستیوں کو، ان سب ہستیوں کو ہدیہ کر دیا، اللہ مبارک کرے۔ جب سے ہم نے یہ ڈالا ہے، یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ ارطغرل کے جو مرشد تھے ان کا شجرہ بہت دنیا نے پڑھا، اور جس جس نے پڑھا مانگا رب نے عطا کی، جو مانگا مرادیں پوری ہوئیں اور برکتیں ملیں اور رحمتیں ملیں۔ اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی ان ہستیوں کے وسیلے سے، برکت سے۔ ایک اعلان تھوڑا سا سن لیں، 13 مارچ بروز اتوار کو حجویری محل میں روحانی دم وہاں ہوگا، جہاں برکت والے تعویذ کا پانی، برکت والی تسبیح کے موتی اور کشف المحجوب کا حل بھی جو ہے وہ دم، کشف المحجوب کا حلقہ اور کشف المحجوب کے پیکج، یہ ڈبے آپ پہلے سے لے لیجئے گا، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ مقصد کوئی ڈبے بیچنے مطلوب نہیں ہے، ڈبوں میں جو کچھ ہے آپ بازار سے قیمت لگوائیں، اکیلے ڈبے کی کتنی قیمت ہے، مقصد بیچنا نہیں، اللہ ہمارے جذبوں کو سچا رکھے۔ تو یہ ڈبے پہلے سے لے لیں، ان کو سمجھیں، گھر لے جایا کریں، ان پہ عمل کر کے پھر ان کو ڈالنا یہی ہے جو مٹکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا آئندہ جو دم ہوگا کب ہوگا؟ 13 مارچ اتوار صبح 9 بجے حجویری محل میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، مارچ کا دم، مارچ کا دم۔ اب مراقبہ ہوگا، زبان کا ذکر اور ایک ہے دل کا ذکر، دل کا ذکر مراقبہ ہے، پوری توجہ سے اللہ کا نام، اللہ کی یادوں کے ساتھ۔ تصور کیا کرنا ہے؟ تصور یہ کرنا ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، عرش الہی سے نور میرے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اس تصور کے ساتھ ہم نے مراقبہ کرنا ہے، ابھی مشق کرنی ہے، گھر میں اس مشق کو بڑھانا ہے، تھوڑا تھوڑا وقت دیتے رہیں دیتے رہیں، پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے، پہلے عادت پھر عبادت بنے گی۔ اس تصور کے ساتھ مراقبہ کرتے رہیں جو کہ روحانیت کی روح ہے، ڈوب جائیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اس کے بعد اختتامی دعا ہے جو روحانی چلے والے ہیں ان کے لیے بھی، جو تسبیح خانے میں دم میں آنے والے ان کے لیے بھی، ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ، اجمدل اجمد يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام وسهل يا الهي كل صعب بحرمه السيد الابرار اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت حليم كريم عفوا كريم يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم اشفني 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 پروردگار عالم جتنی تیری بندیاں اور بندے یہاں موجود ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں جس کونے میں موجود ہیں سب کی حاضری قبول فرما سب کی حاضری قبول فرما سب کی حاضری قبول فرما سب کو دنیا آخرت کی عزتیں خیریں برکتیں عطا فرما کامل ایمان کی دولت دے دے کامل اخلاص کی دولت دے دے کامل برکت اور عافیت دے کامل برکت اور عافیت دے کامل برکت اور عافیت دے دل کی دنیا آباد کر دے جذبوں کی دنیا شاد کر دے الہی ان کے اٹھے ہوئے قدم قبول فرما ان قدموں سے اٹھنے والی دھول کو جہنم کی آگ تو آگ دھوئے سے حفاظت کا ذریعہ بنا اے ان جیب سے جو کرایہ خرچ کیے یہاں آنے کے لیے یا کوئی راستے میں کھانا کھایا اے اللہ ایک ایک پیسے کو ان کی نسلوں کے لیے خزانہ بنا دے خزانہ بنا دے اے اللہ ان کو تسبیح اور تسبیح خانے کی نسبت سے جو کوئی ناگواریاں آئیں اور زندگی میں کبھی سننے سنانے میں یا سوچوں اور وسوسوں سے انہیں یا نفس اور شیطان نے راہیں روکی اے اللہ اس ہر ہر ناگواری پہ انہیں احد پہاڑ سے زیادہ اجر عطا فرما اجر عطا فرما اللہ ان کے ترازو ہم سب کے ترازو تول دے ہم سب کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ برکتیں دے دے رحمتیں دے دے الہی آج کے دور فتنوں کا دور دجالی فتنوں کا دور اور اس فتنوں کے دور میں یہ تیری مخلوق تیری بندے اور بندیاں ہم سب ان راہوں پہ چل رہے اے اللہ تیری رحمت ہے سب سے پہلے اور پھر مولا ہمارے ان ٹوٹے اور الجھے قدموں میں تیری رحمت شامل ہے پھر جب رحمت شامل ہے تو قبول بھی فرما محبوب بھی فرما مقبول بھی فرما اور ہماری ہر قدم پہ اپنی رحمت کو متوجہ فرما تیری بندیاں اور بندے جھولیاں بھر کے جائیں مرادیں پا کے جائیں خوشیاں خوشحالیاں لے کے جائیں عزتوں اور شان و شوکت کے تاج اور سہرے اور جھولیوں میں پھول اور برکتیں اور رزق اور صحتیں اور خوشیاں اور خوشحالیاں اے اللہ جب گھروں کو جائیں اپنے مقام پہ جائیں اتنا عطا فرما اتنا عطا فرما اتنا عطا فرما دنیا کو بانٹے نسلوں کو بانٹے اور نسلیں خوشحال نسلیں بامراد ہو جائیں الہی انہیں خالی نہ لوٹا الہی انہیں خالی نہ لوٹا الہی یہ خدمت کرنے والے مختلف شعبوں کے تیرے لیے دھکے کھا رہے تیرے لیے چل رہے سڑ رہے تیرے لیے اپنی ناگواریوں کو برداشت کر رہے اور تیرے لیے مسافرت کو اختیار کیا ہے اور تیرے لیے ان کے قدم اور جذبے اٹھ رہے ہیں اللہ میرا گھر خالی میں خالی تیرا گھر بھرا تو بھرا اب انہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما انہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما انہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما مجھے اور میری نسلوں کو بھی محروم نہ فرما تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما تسبیح خانے کی جائیں بائیں کے جذبے قبول فرما تسبیح کو دائیں بائیں سے عافیت عطا فرما ہر فتنے سے حفاظت فرما اہل لوگوں کو متوجہ فرما الہی ضرورتیں غیب سے پوری فرما جو بھی تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے دنیا میں جس کونے میں ہیں اللہ ان کی آنکھوں کی خیر کا ان کے قدموں کی خیر کا ان کے جذبوں کی خیر کا ان کے صبح شام کو خیر بنا دے ان کے پل پل کو وسیع اور عریض کر دے ان کو دنیا بھی عزت دے ان کو آخرت کی بھی عزت دے ان کو دنیا کی بھی خیر دے ان کو آخرت کی بھی خیر دے انہیں محروم نہ فرما محروم نہ فرما بے اولادوں کو اولاد دے بے گھروں کو گھر دے بے دروں کو در دے بے سہاروں کو سہارا دے اے اللہ ان کے حوصلے بلند کر دے ان کے جذبے وسیع کر دے ان کی مرادیں پوری کر دے ان کے گھر کے فقر ہٹا دے ان کی شادیوں میں آسانیاں بنا دے ان کی اولادوں میں خیر ڈال دے اور اے اللہ ان کے ہر قدم سے نفس اور شیطان کی شرارت دور کر دے. اے اللہ ہم سب کو جادو جنات سے بچا, النظر بد سے بچا, نفس اور شیطان کے شر سے بچا, شر شیطان شر انسان سے بچا. الہی عافیت عطا فرما, آزمائشوں کے دروازے نہ کھولنا, عافیت عطا فرما, نسلوں کے لیے بھی عافیت عطا فرما, نظام کے لیے بھی عافیت عطا فرما. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی, اس دعا کو ہمیشہ ہمارے ساتھ فرما. اور ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اس دعا کو ہمیشہ ہمارا ساتھی بنا. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اور اس دعا کی زندگی میں چھتریاں عطا فرما, سائے عطا فرما. اس دعا کے سائے میں ہماری زندگی گزروا دے, دنیا بھی لاجواب پیکج کے ساتھ, آخرت بھی بہترین پیکج کے ساتھ. الہی ہماری ہر دعا قبول فرما, ہر ضرورت پوری فرما, ہر مشکل حل فرما, ہر ناکامی ختم فرما, دل کی مرادیں پوری فرما, من کی آسیں پوری فرما, چاہتیں ضرورتیں پوری فرما, مشکلیں پریشانیاں حل فرما, غم کی دنیا ختم فرما, ہماری کشتی کو پار لگا. دنیا بھی بہتر فرما, آخرت بھی بہتر فرما, اور دنیا آخرت کے سارے غم ٹال دے, سارے دکھ ٹال دے, ساری پریشانیاں دور کر دے. الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین, آمین, آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.